Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा सारे भक्त आ गए तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं इसलिए उनका प्राकट्य उनका अप्राकट्य ये भी दिव्य ही है परंतु जो परंपरागत आने वाले ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं उनके मन में तरह तरह की गलत धारणाएं हो सकती हैं कृष्ण के आविर्भाव और तिरुभाव के संबंध में श्री राजीव गोस्वामी श्री श्रीधर गोस्वामी श्री श्रीधर स्वामी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन्होंने अपने टीकाओं में इन चीजों के बारे में बड़े विस्तार में व्याख्या की हुई है और सुखदेव गोस्वामी ने भी काफी विस्तार में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि श्री कृष्ण का आविर्भाव और श्री कृष्ण का तिरुभाव ये वास्तव में क्या है सूर्य का उदाहरण हम दे रहे थे थोड़ी देर पहले तो भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतीर्ण हुए थे तीन चीजों के लिए परित्राणाय साधु नाम भक्तों की रक्षा करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों का विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की संस्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे भगवान कहते हैं ना युग युग में प्रकट होता हूं तो अब भगवान यहां 125 वर्षों तक रहे और जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो आए थे वो उद्देश्य पूर्ण हो गए अब भगवान ने सोचा कि स्वधाम लौटने का समय आ गया पृथ्वी लोक के 125 वर्ष भगवान के लिए तो एक क्षण भी नहीं है एक क्षण से भी कम तो इन लीलाओं को एक क्षण में यहां कर लिया दूसरे क्षण में दूसरे ब्रह्मांड में कर लिया तीसरे ब्रह्मांड में क्षण क्षण में भगवान की लीलाएं निरंतर ऐसे चलती रहती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे तिरुभाव का समय तो आ गया परंतु अब मेरे जो यदुवंश के सदस्य हैं मेरे रिश्तेदार हैं उनका क्या होगा वो भी तो मेरे साथ में आए थे आपको याद होगा जब हम नाथद्वारा में थे हम बता रहे थे कि श्री कृष्ण के तीन प्रकार के पार्षद थे एक है वो नित्य शुद्ध भक्त जो भगवान के धाम से उनके साथ में आए थे और जब भगवान को वापस जाना है स्वधाम, तो ये भी सब स्वधाम चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के पार्षद वो होते हैं जो साधन सिद्ध होते हैं, जो भगवान के साथ उनके धाम से नहीं आए हुए होते हैं, यहीं से अनेक जन्मों से भक्ति करके तपस्या करके वो इस काबिल बन चुके होते हैं कि वो भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं, जबकि भगवान यहाँ भौतिक सृष्टि में लीलाओं को प्रकट करते हैं। फिर उन नित्य सिद्ध पार्षदों के संग में, भगवान के सानिध्य में, भगवान की सेवा करते करते जो भी लेश मात्र कोई कलमश बचे हुए हैं उनके हृदय में, वो भी नष्ट हो जाते हैं और वो भी नित्य सिद्धों के साथ भगवान के धाम में वापस चले जाते हैं, जब श्री कृष्ण चले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है तो सीधे गोलोक वृंदावन नहीं जाता, वो भौतिक सृष्टि में ही एक ऐसे ब्रह्मांड में जन्म लेता है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को प्रकट करके अपनी लीलाओं को संपन्न कर रहे होते हैं। फिर वहां पे नित्य सिद्ध भक्तों के साथ रह के उनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण मिल जाता है कोई सूक्ष्म सूक्ष्म बातों की। फिर जब भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं तो फिर वो भगवान और उनके पार्षदों के साथ उनके धाम में चले जाते हैं। तीसरे श्रेणी के पार्षद वो हैं जो देवलोक के निवासी थे। आपको याद होगा कि देवतागण पृथ्वी माता की दशा को देखकर शोकग्रस्त हुए थे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमें भगवान विष्णु के पास ही जाना होगा। तो वहाँ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में, वहाँ जाके क्षीर सागर के तट में प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को, पुरुष सूक्त प्रार्थना। और ब्रह्मा जी के ध्यान में भगवान उत्तर देते हैं। सारे देवतागण भगवान को देख नहीं पाते न सुन पाते हैं, ब्रह्मा जी भी देख नहीं पाते, केवल भगवान की आवाज उनके हृदय में गूंजती है। भगवान ब्रह्मा जी को एक निमित्त बनाते हैं देवताओं को संदेश पहुंचाने के लिए। फिर ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि मैं शीघ्र ही प्रकट हो जाऊंगा, सारे देवताओं को आश्वासन दिलाओ कि कोई चिंता की बात नहीं है। तो देवताओं के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण तैयार हो जाते हैं पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए। परंतु वो देवताओं को आदेश देते हैं कि मेरे आगमन के पहले और साथ साथ भी आपको भी यहाँ प्रकट होना होगा, आप सब यदुवंशी बन जाओ, यदुकुल में आप प्रकट हो जाओ और मेरी लीलाओं में आप सहायता करो। तो फिर ये भी जन्म लेते हैं और ये भी भगवान के पार्षद बन जाते हैं। इस तरह से ये तीन वर्ग होते हैं जो श्री कृष्ण के साथ में रहते हैं। अब जब श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं तो ये तीन वर्ग के जो उनके भक्त हैं, पार्षद हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं? जो उनके नित्य सिद्ध भक्त हैं जैसे हम बता रहे थे, वो तो भगवान के धाम में जाते हैं सीधे। और जो साधन सिद्ध हैं, जिनको यहाँ भगवान की लीलाओं में शामिल होने का अवसर मिला है उनके धाम में, भौम धाम में, वो भी नित्य सिद्ध भक्तों के साथ चले जाते हैं गोलोक वृंदावन या द्वारका या जहां भी हो। परंतु वो तीसरे श्रेणी के जो होते हैं देवलोक में रहने वाले देवतागण, उनमें से कई भक्त ऐसे होते हैं जिनकी अभी तक तैयारी नहीं होती है पूरी तरह से गोलोक वृंदावन या द्वारका धाम, वहां उस जगत में जाने की। दूसरी बात, उनकी सेवा थोड़ी बहुत बची हुई रहती है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप अभी मेरे धाम में नहीं आना, आपको हम देवलोक ही वापस भेजेंगे। स्वर्गलोक में जाओ, आपकी सेवा करो मेरे लिए। भौतिक सृष्टि का व्यवस्थापन संभालना ये आपका काम है, ये भी मेरी सेवा है, तो आप इस काम में लगे रहो। तो इस तरह से देवता देवलोक से प्रकट होने वाले जो भक्त हैं अधिकतर वो सभी देवलोक में ही लौट के चले जाते हैं। तो खैर, अब भगवान ने सोचा कि मुझे तो अब प्रकट होना चाहिए, परंतु क्या किया जाए, मेरे यदुवंशियों को तो वापस ले जाना चाहिए, मेरे पहले यदि मैं उनको वापस नहीं ले जाऊं तो यहाँ पे बड़ा उत्पात हो जाएगा। क्यों उत्पात हो जाएगा? क्योंकि मेरे जो यदुवंशी हैं, निज जन है, मेरे जन है ये, मेरी कृपा से उनको इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई है कि ऐसा कोई नहीं है जो उनका सामना कर सकता है इस ब्रह्मांड में। पृथ्वी लोक की बात तो दूर रही, देवलोक के निवासी भी यदुवंशियों का सामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सानिध्य में, मेरी कृपा से, मेरे रिश्तेदार होने के नाते वो मेरे भुजाओं के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए? फिर कोई ऐसे एक युक्ति, कोई ऐसे एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये आपस में ही लड़े, क्योंकि और तो कोई उनकी हत्या नहीं कर सकता, एक दूसरे की हत्या ही कर सकते हैं, और तो कोई है नहीं, देवलोक के लोग भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई युक्ति मुझे ढूंढ निकालनी होगी। फिर भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा एक ऐसी लीला को प्रकट कराते हैं जिसमें सारे यदुवंशी यहाँ प्रभास क्षेत्र में आते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और फिर सब अपने अपने जगह वापस चले जाते हैं। जिनको भगवान के धाम में जाना है वो वहां जाते हैं, जिनको देवलोक में जाना है वो वहां जाते हैं। तो इसे मौसम लीला कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं, परंतु इसके पहले हम ये चर्चा करना होगा कि भगवान को ऐसे रास्ता ढूंढने की क्या आवश्यकता थी। ये सोचने में थोड़ा कुछ एक अजीब सी बात लगती है कि भगवान ने ऐसी योजना की कि उनके परिवार के सदस्य जो उनके भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके किसी मादक द्रव्य का सेवन करने के बाद उस उन्मत्त अवस्था में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके एक दूसरे को मार डाले, ये बड़ा विचित्र कुछ लगता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? अनेक कारण है। पहला कारण तो ये है कि जैसे हम बता रहे थे कि यदि श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो यदुवंशी यहां रह जाते, और जैसे ज्वार भाटा है जो असीमित हो जाती है और फिर सारे पृथ्वी को वो जल के अंदर डाल सकती है, तो उनको रोकने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए आपस में ही एक दूसरे की हत्या करके ये संभव था। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ठीक है, और कोई नहीं कर सकता था, परंतु श्री कृष्ण स्वयं तो कर सकते थे ना, तो श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका उत्तर ये है कि क्योंकि ये लोग श्री कृष्ण के परिवार के सदस्य थे, इसलिए श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से ये बात नहीं की। तो यही एक रास्ता रह गया था। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि ये यदुवंशी, इनमें से कई भक्त ऐसे थे जिनको इतना एक अहंकार या घमंड आ गया था कृष्ण के सानिध्य के कारण कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण हमें हमारी रक्षा करेंगे, मैं कृष्ण का पार्षद हूं, जब तक कृष्ण हमारे साथ में हैं हम द्वारकावासी हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे अहंकार के कारण या घमंड के कारण वो धीरे धीरे से धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने लगे थे। जब घमंड आ जाता है तो आदमी कभी कभी गलत काम कर लेता है। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे मैंने इतने असुरों का वध किया क्योंकि वो लोग धर्म का उल्लंघन कर रहे थे, अब मेरे ही लोग धर्म का उल्लंघन करने लगे तो फिर ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए इससे पहले कि और कुछ गड़बड़ कर दे यहाँ पे, उन्हें यहाँ से दूसरी जगह ले जाना होगा। वैसे ये भगवान की लीला है। जीव गोस्वामी पाठ बताते हैं कि भगवान के पार्षद भले कोई अधार्मिक कार्य कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, परंतु भगवान ने एक ऐसे माया के द्वारा उनकी लीला रचाई कि ये सब संभव हो पाया। श्री कृष्ण को ये भी एक डर था कि मेरे यदुवंशी भक्त जो है मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मेरे बारे में ही स्मरण करते हैं। मेरे शुद्ध प्रेमी हैं ये, और मेरा विरह उनको सहन नहीं होगा। जब मेरा तिरोभाव हो जाएगा, यदि ये लोग यहीं पर रह जाएंगे तो अपने विरह में वो पागल हो जाएंगे और न जाने क्या कर बैठेंगे और बहुत उत्पात पैदा हो जाएगा सारे सृष्टि में। इसलिए इनका तिरोभाव मेरे तिरोभाव के पहले होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विनाशाय च दुष्कृताम, या धर्म या अपना जो असुरों का वध करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वृंदावन में रहते हुए, मथुरा में रहते हुए और अन्य स्थानों में भी अनेक असुरों का वध किया। फिर उन्होंने अपने पांडवों के, जो अपने शुद्ध भक्त हैं पांडव, उनके द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में और कई अनेक ऐसे राजाओं का, क्षत्रियों का वध किया जो पृथ्वी के ऊपर भार बन गए थे, बोझ बन गए थे। तो भगवान की योजना से करोड़ों की संख्या में ऐसे राजा सैनिक आदि इकट्ठे हुए थे कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धोत्सव, युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे वहां पर। तो एक दूसरे की के प्रति प्रहार करके उन्होंने पृथ्वी का भार कम कर दिया। जिस तरह से गर्मी के मौसम में एक वन में जब गर्म हवा बहती है और बांस या अन्य पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं एक दूसरे से खिसती हैं और उस घर्षण के कारण जो गर्मी पैदा होती है वो बढ़ती जाती है, और गर्म हवा साथ साथ होने के कारण उसमें कहीं चिंगारी लग जाती है और हवा बहती रहती है, इसलिए वो चिंगारी एक प्रज्वलित अग्नि बन जाती है और सारे वन को खा जाती है, एक दावानल हो जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि यह दावानल प्रारंभ हुआ कैसे। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी इच्छा से ऐसे कोई एक लीला रचाई, ऐसे कोई परिस्थिति का निर्माण किया जिसके द्वारा यदुवंशियों ने आपस में एक दूसरे के साथ घर्षण करके घिस के एक दूसरे की हत्या कर दी, कुरुक्षेत्र युद्ध में क्षमा कर दीजिए। उसी तरह से अब जब वृंदावन में असुरों का वध किया, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में किया, अपने यदुवंशी भक्तों के द्वारा भी अनेक असुरों का वध कर दिया, परंतु जब अन्य लोग सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने सारे असुरों का वध किया, तब कृष्ण सोचने लगे कि ये बात तो सही है, परंतु अब मेरे यदुवंशी भक्त ऐसा कर रहे हैं तो इनके बारे में क्या करना चाहिए। तो एक ही रास्ता रह गया है, ऐसे ही युक्ति का प्रयोग मुझे करना होगा। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब मेरे यहाँ कार्य संपन्न हो चुके हैं, अब यहाँ रह के क्या करना है, मुझे दूसरे ब्रह्मांड में जाना है, वहां लीलाओं को करना है, तो मेरे इन साथियों की जरूरत है, तो वो भी मेरे साथ में चलेंगे। जैसे कभी नाटक करने वाले कोई दल होते हैं ना, दल होता है उनके नटों का, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे यात्रा वगैरह होती है, बंगाल में यात्रा कहते हैं और कर्नाटक में यक्षगान कहते हैं, ऐसे नाटक करने वाले कई दल होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान उसी नाटक को करते करते जाते हैं, तो वही सदस्य उनके घूमते फिरते हैं, और कभी कभी एक दो इधर उधर लोग जुड़ भी जाते हैं उनके, तो ऐसे ही भगवान की लीलाएं होती हैं। एक ब्रह्मांड में लीला करते हैं, फिर वही लोग दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, फिर तीसरे ब्रह्मांड में, ऐसे सतत ही चलते रहता है। तो ये और एक कारण था कि भगवान ने ऐसे किया, उनको आगे की लीलाएं करनी थी। श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के मूल टीकाकार है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि इस मौसल लीला के पीछे एक कारण ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ भौतिक जगत में रहने वाले बद्ध जीवों को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, और वो संदेश क्या है कि यहाँ पे सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ अस्थाई है, तुम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो जाओ, कितने भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो जाओ, तुम मेरे परिवार के सदस्य भी क्यों ना बन जाओ, लेकिन यह सब कुछ समाप्त होने वाला है। और किस तरह से समाप्त होता है देखो, ऐसे भयानक ढंग से भी हमारे सारे सपनों का चूर चूर हो सकता है, और जब मृत्यु आती है तो ऐसे होता ही है। इसलिए मौसल लीला को सुन के हमारा विश्वास भौतिक जगत में कम होते जाना चाहिए। ये विश्वास जो होता है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन, आज इंद्र तृप्ति से सुख नहीं पाया, कल पाएंगे अवश्य, कल नहीं पाया परसों तो अवश्य पाएंगे, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, पाएंगे तो जरूर, ये विश्वास हमारा टूट जाएगा। भगवान यही चाहते हैं कि हमारा ऐसा झूठा विश्वास टूट जाए। तो हमें ये सब सिखलाने के लिए कि देखो, तुम्हारे छोटे मोटे सपने जो हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो तो बहुत छोटी चीजें हैं। देखो, मेरे यदुवंशी हैं, मेरे निज जन हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, और उनके साथ भी देखो कैसे हुआ, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होना है। तो यहां संसार में अपने सपने नहीं बनाना, झूठे दुनिया में झूठे अपने वहम में नहीं रहना, सच्ची दुनिया तो मेरे, सच्चा जीवन तो मेरे साथ मेरे धाम में है, तो मेरे पास आओ। तो ऐसे मौसल लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हम सबको उनके धाम में आमंत्रित करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं कि यहां भौतिक जगत में रह के सुखी बनने का प्रयास नहीं करना, शुद्ध भक्ति को स्वीकार करके मेरे धाम में अंत में लौट के आना। और एक कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि वैष्णव अपराध करने से कितना नुकसान होता है। हमने वो नाटक देखी थी जो बच्चों ने दिखाया था कल, कि यदुवंशी यदुकुमार जो हैं, मिलजुल कर वो थोड़े मजाक करना चाहते थे, और उन्होंने सोचा कि यहाँ जो संत हैं उनका कुछ मजाक किया जाए, तो सांब के पेट में उन्होंने कुछ तकिया वगैरह रख दिया ताकि, और एक स्त्री का वेश पहना दिया, मानो कि वो गर्भवती स्त्री है, और वो गए संतों के पास। वहां बड़े बड़े भक्त थे, नारद जी थे और अनेक थे, और उनसे मजाक में कहने लगे एक ढोंग से अपनी नम्रता का स्वरूप लेकर, जानबूझकर, मतलब ये तो एक अपराध घमंड होता है, परंतु घमंड में ऐसे झूठा जो नम्र झूठी नम्रता लेकर चले गए, और कहने लगे कि हे महाजन लोग, देखिए हे मुनिवर, यहाँ एक स्त्री है और वो जानना चाहती है कि उसके बच्चा जो है लड़का होगा या उसकी लड़की होगी। तो संतों को तो पता चल गया कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हे दुष्टों, ये ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके गर्भ से एक मुशल उत्पन्न होगा। मुशल अर्थात एक गदा जो लोहे का बना हुआ होता है, ये मुशल उत्पन्न होगा जो कि तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। जब ऐसा कोई श्राप सुनते हैं यदु कुमार, तो उनके होश ठिकाने आ जाते हैं, डर जाते हैं, डर के मारे वापस सीधे उग्रसेन महाराज के पास जाते हैं, कृष्ण के पास नहीं जाते। कृष्ण को कैसे मुंह दिखाएंगे? तो भरी सभा में सबके सामने यदु कुमार उग्रसेन महाराज को बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी श्राप मिल गया इन ऋषियों के द्वारा, अब क्या करें। तो सारे द्वारका निवासी चकाचौंध हो गए, अरे ये क्या हो गया, थोड़े हताश हो गए। तो महाराज उग्रसेन ने कहा, ठीक है चलो, जो हुआ सो हुआ, तुम लोगों ने गलती कर ली, परंतु अब क्या किया जाए। क्योंकि उस समय जब उन यदु कुमारों ने तकिया निकालने के लिए कपड़े उठाए, तो देखा कि वास्तव में तकिया की जगह में एक मूशल ही था। तो उग्रसेन राजा ने कहा कि उस मूशल को चूर चूर कर दो। तो चूर चूर कराया गया और स्वयं महाराज उग्रसेन अन्यों के साथ समुद्र के तट पे गए और समुद्र में उनको उन्होंने फेंक दिया। तो हुआ ये कि समुद्र में पानी के लहरों से वो लोहे के चूर चूर जो है इधर उधर बिखर गए, और पानी के लहरों के साथ में जब ज्वार बढ़ा तो फिर से जमीन के ऊपर आ गए और एक जगह बस गए, यहीं पे प्रभास क्षेत्र में आके समुद्र के तट में बसे, और वहां से तरह तरह के चीजें उगने लगी, जैसे बांस होते हैं ना वैसे उस तरह के, जो बहुत कड़क थे, कड़े थे, वो कठोर थे, तो ऐसे बांस की तरह कोई चीजें उगने लगी। उधर एक लोहे का टुकड़ा था छोटा सा, वो एक मछली के मुंह में चला गया, मछली ने निगल लिया, मछुआरे ने अपने जाल के द्वारा उस मछली को पकड़ लिया और लोहे का टुकड़ा मिल गया, और लोहे का टुकड़ा किसी एक शिकारी को बेच दिया उस मछुआरे ने। तो उस शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े से एक तीर बना लिया, उस शिकारी का नाम था जरा। तो जरा ने तीर तो बना लिया ऐसे। अब इधर जब उग्रसेन महाराज ने ऐसे करवा दिया, सब समंदर में सारे चूर फेंक दिए लोहे के, तो सब जगह अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। श्री कृष्ण भी सोचने लगे, श्री कृष्ण ये सब शांति से देख रहे थे, ये सब क्या हो रहा है, और यदु कुमारों ने ऐसे ऐसे अपराध किया है वैष्णवों के प्रति, और साथ साथ में अब महाराज उग्रसेन ने ऐसे करवाया है, चूर करवा के समुद्र में फेंक दिया है। तो भगवान तो जानते थे, उनकी योजना से ही तो सब हो रहा था। तो फिर उन्होंने अपने प्रिय भक्तों से कहा, सुधर्मा सभागृह में उन सबको बुलाया और कहा कि जो दैव से होना है वो होना है, अब जो महान संत होते हैं उनकी वाणी की झूठ नहीं निकल सकती। तो बहुत अशुभ लक्षण यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए हमें इस समय द्वारका को तुरंत छोड़ के जाना चाहिए। हम तीर्थ स्थान में जाते हैं प्रभास क्षेत्र में, वहां पे हम तपस्या करते हैं, हम यज्ञ आदि संपन्न करते हैं, उपासना करते हैं, और इस तरह से जो अशुभ लक्षण है वो हो सकता है मिट सकते हैं। यहां रहने से निश्चित है हमारा नाश, इसलिए वहां हमें जाना चाहिए। तो सारे यदुवंश के सदस्य तैयार हो गए, वो निकल पड़े और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वो पहले नौके में बैठे, नौके में बैठकर यहाँ आके जमीन पर आए, यहाँ से रथों में बैठ के प्रभास क्षेत्र पहुंचे। तो नौके में बैठे का मतलब क्या है, बेट द्वारका जहां हम गए थे ना, वहां से नौके में हम आए थे ना द्वारका, तो उसी रास्ते से वो भी आए थे, नौके में बैठकर आए थे। स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी बताते हैं नौके में बैठकर आए, जमीन पर जब आए यहाँ फिर से, फिर वहां से प्रभास क्षेत्र यहाँ रथ में बैठ के चले आए। और श्री कृष्ण ने कहा कि जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको शंखोद्धार क्षेत्र में भेजना चाहिए, और अर्जुन से कहा कि फिर इनको वहां से इंद्रप्रस्थ ले जाओ। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिए और जो हृष्टपुष्ट जो सब पुरुष थे उन सबको यहां भेज दिया प्रभास क्षेत्र में। तो ऐसी लीला हुई। ये वर्णन सारा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में पाया जाता है, पहले अध्याय में, 6ठे अध्याय में, 3रे अध्याय में, 31वें अध्याय में। तो जब यहां सब चले आए, उधर भगवान की योजना से सभी ने मैरेय नाम के मादक द्रव्य का सेवन करना शुरू कर दिया। और आप तो जानते हैं कि जब मादक द्रव्यों के प्रभाव में आदमी होता है, नशे में होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा होता है, और कभी कभी क्रोध में वो कुछ भी कर बैठता है। तो इन सब ने मादक द्रव्यों का सेवन किया और एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। बड़े जोरदार वहां पर युद्ध हुआ आपस के बीच में। सांब किसी से लड़ रहे हैं, अनिरुद्ध किसी और से लड़ रहे हैं, आपस में भाई भाई रिश्तेदार एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, जबरदस्त प्रहार। कभी घोड़े के ऊपर बैठ के, हाथी के ऊपर बैठ के, हाथी भी मर गए तो नीचे उतर के, फिर अस्त्र भी खत्म हो गए तो मुक्का प्रहार करने लगे। फिर देखा कि यहाँ पे बांस की तरह कुछ उग रहे हैं तट पे, तो उसे छड़ी के समान है, चलो उनको उठाओ। उनको उठाया तो वो लोहे में परिवर्तित हो गए, लोहे थे ही पहले से। तो लोहे के छड़ी से लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। कृष्ण के ऊपर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया, बलराम के ऊपर भी करना शुरू कर दिया। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण बलराम ने भी अपनी छड़ी चलाना शुरू कर दिया वहां पे। दोनों को बहुत क्रोध आया, वो भी उस लीला में शामिल हुए थे। कृष्ण बलराम तो निकल आए वहां से। और फिर सारे यदुवंश के जो जो लोग थे वो वहां पर रहे, उन सब का विनाश हो गया भौतिक दृष्टि से, साधारण दृष्टि से। हमें याद रखना चाहिए, जैसे हम पहले बता रहे थे कि ये भगवान की लीला है, ये माया के अंतर्गत सब भगवान ने करवाया। तो सब अपने अपने स्थान में चले गए वापस। उधर भगवान श्री कृष्ण यहाँ चले आए जिस स्थान में हम गए थे, भालका तीर्थ, आपको याद होगा, जहाँ दोपहर में खूब कीर्तन किया हमने, और वहां श्री कृष्ण के विग्रह को देखा होगा आपने। ऐसा विग्रह और कहीं नहीं देखा होगा आपने। श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं, वैसे तो अक्सर श्री कृष्ण खड़े हुए होते हैं और विश्राम कर भी रहे होते हैं, तो वो विष्णु भगवान करते हैं, अनंत शेष पर शयन करते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान का शयन करते हुए ऐसे कहीं मूर्ति नहीं मिलेगी सिवाय यहाँ। तो श्री कृष्ण अपने चरण कमलों को ऊपर किए हुए विश्राम कर रहे थे पीपल वृक्ष के नीचे, और उस मंदिर के अंदर भी एक पीपल वृक्ष था, आपने देखा होगा, और उसकी छाया में आराम कर रहे थे। और दूर जहां त्रिवेणी संगम हम गए थे स्नान करने के लिए, उसको भृगु तीर्थ कहते हैं, वहां एक ये शिकारी था जिसका नाम था जरा। आपने देखा होगा कि भगवान की उस मूर्ति के सामने शिकारी बैठा था, उसकी मूर्ति भी थी वहां पे। तो ये जरा, ये वहां उस स्थान में जहां हम आज शाम को स्नान करने गए थे ना, वो वहां बैठा था। और भगवान यहाँ भालका तीर्थ में थे। अच्छा, भालका तीर्थ क्यों है? भल अर्थात संस्कृत में जो तीर होता है उसको भल कहते हैं। तो क्योंकि ये तीर के द्वारा जरा ने आक्रमण किया, तीर छोड़ी भगवान के ऊपर, इसलिए वो भल से भलका हो गया, भलका तीर्थ कहलाता है। तो जरा ने वहां से यहाँ तीर छोड़ी, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का रंग जो होता है एक लाल कमल के समान सुंदर होता है। तो दूर से उस जरा नाम के शिकारी ने देखा, कुछ लाल लाल दिखाई पड़ रहा है। उसने सोचा ये कोई हिरण है जिसका मुख है, लाल मुख है। तो अपने तीर छोड़ दी वहां, और फिर वो तीर भगवान के चरण कमलों के अंगूठे में लग गई। वैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो दिव्य है, भौतिक शरीर तो नहीं है। तो भगवान ने जब लीला की तो किस शरीर पे ये तीर लगी? भगवान के शरीर पे तीर लगती भी लग भी जाए, जैसे कि लगती थी कभी कभी, भगवान जब युद्ध कर रहे थे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, और अनेकों बार उन्होंने युद्ध किया यहाँ, तो तीर लगती भी थी। तो उनका शरीर तो सच्चिदानंद है, तो ये भौतिक पदार्थों से बने हुए तीर उनके दिव्य शरीर को भला क्या हानि पहुंचा सकती है? भगवत गीता का प्राथमिक ज्ञान आत्मा के बारे में यही है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। कि किसी अस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, अग्नि के द्वारा आत्मा जलाया नहीं जा सकता, पवन के द्वारा आत्मा जो है सुखाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कोई भौतिक पदार्थ आत्मा का परिवर्तन नहीं कर सकती है, और ये तो छोटे से जीवात्मा की बात है। तो भगवान का जो दिव्य शरीर है पूर्ण आध्यात्मिक है, पूर्ण सच्चिदानंद है, तो उनके शरीर में भला एक तीर से एक अस्त्र से कैसे हानि पहुंच सकती है? जब भगवान का शरीर आध्यात्मिक है तो मृत्यु का तो सवाल ही नहीं होता। आत्मा भी जब नहीं मरती तो भगवान कैसे मर सकते हैं? तो जब तीर लगी, जरा ने छोड़ी हुई तीर जब भगवान के शरीर को लगी, तो क्या इसके द्वारा भगवान का तिरोभाव हुआ? नहीं। श्रील मध्वाचार्य समझाते हैं कि भगवान ने एक दूसरे अपने भौतिक शरीर को निर्मित किया वहां, माया शरीर उनका, और उस माया शरीर के ऊपर ये तीर लग गई, और सारे दुनिया के लिए अर्थात अश्रद्धालु लोगों के लिए भगवान ने यह भौतिक शरीर अपना, अर्थात अपना जो नकली शरीर है, माया का शरीर है, वो छोड़ दिया। परंतु असली जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान उस शरीर में ही स्वधाम आराम से चले गए। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उस तीर को स्वीकार किया, ये लीला की अपने स्वयं के प्रभाव के लिए, केवल उन लोगों के लिए जो भगवान के दिव्यता को, उनके सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं जानते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं होती है कि भगवान एक दिव्य व्यक्ति हैं, जिनका शरीर है सच्चिदानंद स्वरूप। तो ऐसे जरा को बहुत बुरा लगा जब उसे पता चला कि अरे मैंने क्या कर दिया। तो श्री कृष्ण के पास दौड़ता हुआ आया, क्षमा याचना की, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझे पता नहीं था, अनजाने में मैं ऐसे तीर छोड़ दिया ये सोचकर कि ये कोई हिरण है, परंतु ये आपको लग गया। तो श्री कृष्ण ने बड़े आराम से आशीर्वाद दिया और कहा नहीं, ये मेरी योजना से हुआ है। और उनके सामने उस जरा को उन्होंने वैकुंठ धाम भेज दिया। उनकी उनका एक रथ आया, रथ में बैठकर जरा चले गए वापस वैकुंठ धाम। ये जरा थे कौन? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं वो थे भृगु ऋषि। भृगु मुनि का नाम आपने सुना है ना। वैसे श्रीमद् भागवत में एक सुंदर कहानी है, कथा है कि एक बार देवलोक में चर्चा ये हुई कि ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु में श्रेष्ठ कौन है, परम कौन है। तो लोग अलग अलग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, कोई स्पष्ट निष्कर्ष पर लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उन्होंने भृगु ऋषि को नियुक्त किया कि आप तीनों के पास जाना और हमें आके बताना कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भृगु ऋषि गए पहले ब्रह्मा जी के पास। अब भृगु ऋषि तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वो परीक्षा करना चाहते थे तीनों की, ये जानने के लिए कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी का आदर नहीं किया उन्होंने। जब कोई पुत्र पिता से मिलता है तो पिता का आदर करना चाहिए, तो उसने पिता का आदर, उन्होंने पिता का आदर नहीं किया जानबूझकर। तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया, परंतु अपने गुस्से को रोक लिया उन्होंने, क्योंकि वो भी बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति हैं, सुसंस्कृत हैं, आत्म साक्षात्कारी हैं। फिर भी उनके आंखों से क्रोध पता चला। जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, तब उनके आंखों को देखना चाहिए, आंखों से पता चलता है ये सचमुच क्रोधित हो गया है या नहीं। और भले वो क्रोधित हो गया, अपने क्रोध को रोकने का प्रयास कर रहा है, परंतु आंखों से पता चल जाएगा। तो भृगु मुनि को ब्रह्मा जी के आंखों को देखने से पता चला कि ये क्रोधित हो गए, क्योंकि मैंने उनको सम्मान ठीक से नहीं दिया, इसलिए गुस्सा हो गए। ये तो भगवान नहीं हो सकते। फिर गए शिव जी के पास। तो शिव जी के पास जब गए तो शिव जी आए, अरे मेरे भाई, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो अरे आओ 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 मेरे भाई हो। तो भृगु मुनि भी परीक्षा करना चाहते थे, जानबूझ से कहा, अरे छी छी छी, दूर रहो हमसे, देखो तुम्हारे शरीर के ऊपर स्मशान का रज सब लगा हुआ है, सब गंदी गंदी चीजें हैं, अब मुझे आलिंगन नहीं करना। शिव जी को बड़ा क्रोध आया, तो त्रिशूल उठाया। पार्वती देवी थी, पार्वती देवी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, आपके भाई हैं भाई। तो शिव जी थोड़े शांत हो गए। तो भृगु मुनि को पता चला शिव जी भी परम नहीं है। फिर वो चले गए भगवान विष्णु के पास। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, लक्ष्मी देवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। तो सीधे वहां पर आए और भगवान विष्णु के वक्षस्थल में भृगु मुनि ने लात मार दिया। ऐसे श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में वर्णन है। जब लात मार दिए जानबूझ के परीक्षा करने के लिए, उनको जानना था, वापस जाके रिपोर्ट देना था कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान विष्णु उठे और उठ के भृगु मुनि के चरणों को उन्होंने हाथ में लिए अपने कर कमलों में और मालिश करने लगे कि अरे अरे भृगु मुनि, आप तो इतने बड़े ब्राह्मण हैं और मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है, कहीं आपके चरणों को कोई चोट तो नहीं पहुंची ना। तो ऐसे धीरे धीरे मालिश करने लगे। वहां लक्ष्मी देवी तो आग बबूल हो गई थी, ये मेरे पति के साथ ऐसे क्यों करते हैं। तो खैर, तो भृगु मुनि आश्चर्यचकित हो गए भगवान विष्णु के मीठे शब्दों के द्वारा। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, विष्णु ही परम है। फिर वापस जाके उन्होंने सबको खबर दी कि मैंने संशोधन कर लिया है और एक व्यक्ति की मेरी कमेटी थी, इस बात में संशोधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो मेरा रिपोर्ट इस प्रकार से है कि विष्णु ही परम है, ब्रह्मा जी नहीं, शिव जी नहीं। तो अब भृगु जी को बड़ा बुरा लगा कि अरे मैंने क्या कर दिया, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में मैंने लात मार दी भगवान के शरीर को। वैसे आवश्यक था ये साबित करने के लिए कि परम कौन है, परम तो मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो इस अपराध के कारण भृगु मुनि को एक निम्न जन्म मिला, निम्न श्रेणी का जन्म, एक शिकारी का जन्म मिल गया। शिकारी तो ऐसे जघन्य कार्य करता है, पशु हत्या करते रहता है, एक अच्छा जन्म नहीं होता ये। तो भृगु मुनि को ऐसा जन्म मिला और वो जरा बने, परंतु वो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए कृष्ण चाहते थे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, तो चलो जल्दी से मेरे भक्त को वैकुंठ भेजना चाहिए, उसे ये उसके ये एक जन्म जल्दी खत्म कर लें। तो ऐसे जरा को एक निमित्त बना दिया, इसलिए जहां से जरा ने वो तीर्थ छोड़ी, यहाँ त्रिवेणी संगम के पास में जो स्थान है उसे भृगु तीर्थ कहते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण वहां आराम से बैठे हुए थे। इसके पहले जब श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को बताया था कि आप सब प्रभास क्षेत्र में चले जाइए, मैं भी आता हूं, तो वहां उद्धव जी थे। उद्धव जी ने भी श्री कृष्ण की सारे बातें सुनी, बड़े बुद्धिमान थे उद्धव जी। श्री कृष्ण से कहा, मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूं एकांत में। तो एकांत स्थान में गए श्री कृष्ण के पास और कहने लगे कि मैं समझ गया हूं कि आपकी लीलाओं को आप समाप्त करना चाहते हैं, आपके तिरुभाव का समय आ गया है, इसलिए आप ये तैयारियां कर रहे हैं और आप कुछ लीला करने वाले हैं जिसके द्वारा आपका सारा वंश का नाश हो जाएगा और इसके बाद फिर आप आगे अपने धाम में चले जाएंगे। तो मैं आपके विरह में नहीं रह सकता, इसलिए मुझे भी आप साथ में ले चलिए। तो उद्धव तो भगवान के श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं द्वारका में। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव अब मेरे साथ में नहीं आना, अब तुम्हारे लिए कोई सेवा है भौतिक जगत में। जो यहाँ धरातल पर अभी तक ऋषि मुनि भक्त और भी हैं, सारे दुनिया के लोगों के लिए तुम्हें एक उदाहरण पेश करना होगा, इसलिए तुम जाओ बद्रिकाश्रम, वहां पे रहो और जब तुम्हारा अंत होगा तो मेरे पास निश्चित आओगे। फिर भी उद्धव श्री कृष्ण का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, तो कहा ठीक है, जाते जाते आप कोई मुझे ऐसे उपदेश दीजिए ताकि मैं आपके विरह को सहन कर सकूं। तो उद्धव ने कई प्रश्न किए और इसके बाद अनेक अध्यायों में 11 स्कंद में उद्धव गीता कही जाती है। तो जो श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में संवाद हुआ उसे उद्धव गीता कहते हैं, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ इसे भगवद गीता कहते हैं, तो उद्धव और श्री कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ उसे उद्धव गीता कहते हैं। 11वें स्कंद में है ये। तो उद्धव गीता के बाद फिर उद्धव निकल पड़े द्वारका से भारी हृदय से कि श्री कृष्ण अभी चले जाने वाले हैं, यदुवंश भी सब चले जाने वाले हैं, उसमें अकेले उद्धव बच गए। वज्रनाभ भी बचे थे कि वज्रनाभ उस समय छोटे थे, अर्जुन के साथ वज्रनाभ जी आए थे, अर्जुन ने आगे चल के वज्रनाभ को मथुरा का राजा नियुक्त किया था। इसकी बात इस चर्चा हम नाथ द्वारा में कर रहे थे। तो खैर उद्धव चले गए बद्रिकाश्रम की ओर और वहां से जब विदुर को मिले तो उन दोनों के बीच में भी बहुत सुंदर संवाद हुआ। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में पाया जाता है। इधर श्री कृष्ण इसी स्थान में बैठे रहे और उस समय उन्होंने देखा कि बलराम जी भी अपने धाम लौटने की तैयारी कर रहे हैं। बलराम जी आए, वो ध्यान में बैठे और फिर सीधे स्वधाम चले गए। श्री कृष्ण यहाँ पर आए भालका तीर्थ से, यहाँ गोलोक तीर्थ में आए जहाँ आज दोपहर में कथा की थी। भगवान के चरण चिन्ह जहाँ थे उस स्थान में आए अपने तिरुभाव की लीला करने के लिए। इसके पहले श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि द्वारका में ही ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर आए, उनके सामने प्रकट हुए, भगवान के लिए स्वर्ग लोक से हार आदि लेकर आए थे, फूलों की माला। भगवान का शरीर फूलों की मालाओं से भर दिया, भगवान को चंदन का लेप आदि लगाया, भगवान की खूब स्तुति की, पूरी पूरी प्रशंसा की भगवान की, और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा सारे देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कि हे प्रभु, हम आपके बहुत आभारी हैं कि हमारे निवेदन पर आप यहां पर प्रकट हुए और दुष्टों का विनाश आपने कर लिया, धर्म की स्थापना आपने कर ली, भक्तों की रक्षा भी आपने कर ली। अब आपकी लीलाओं की समाप्ति का समय आ चुका है। अब आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप स्वधाम लौट जाएं, परंतु ये कृपा हम सबके ऊपर करें, हम जो आपके शरणागत भक्त हैं, कि आपको रखें, आपकी रक्षा के बिना, आपकी कृपा के बिना हम हमारे निहित कार्यों को कर नहीं पाएंगे, नहीं आपकी सेवा हम ठीक से कर पाएंगे। इसलिए आपकी रक्षा, आपकी कृपा हम हमारे साथ हमेशा रहे, और जब आप जाएंगे तो कृपया हमारे धाम में भी आके जाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मा जी आपने सही बात कही है, अब लीला मेरे समाप्त करने का समय आ चुका है, जिन कार्यों के लिए मैं आया था यहां उन वो पूरे हो गए, तो अब मैं यहां से निकलूंगा शीघ्र ही। आपने ये सही बताया कि मेरे परिवार के सदस्यों का तिरुभाग योजना भी मैं कर चुका हूं, शीघ्र ही उनका भी तिरुभाग हो जाएगा, उसके बाद मेरा तिरुभाग यहां से होगा और मेरे लोग मेरे धाम में जाते जाते आपके धाम में मैं थोड़े समय के लिए रुकूंगा और फिर आगे मैं निकलूंगा। जैसे हम कभी रेलगाड़ी लेते हैं ना, एक जगह से दूसरे कहीं रुक जाते हैं रास्ते में, एक स्टेशन पर रुक जाते हैं, तो भगवान कहते हैं आप ब्रह्मलोक के स्टेशन में मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहूंगा, और इसके बाद फिर वो चले जाते हैं। और जब तीर जरा के तीर छोड़ने की बात आ जाती है, जरा को वापस भेज देते हैं और भगवान फिर अपने तिरुभाव की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय फिर से सारे देवतागण आते हैं। उस समय भगवान अपनी आंखों को बंद कर देते हैं, मानो कि वो समाधि में बैठे हैं। और क्यों समाधि में बैठे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अरे ये अब तो अंत का समय आया, मैं जाने वाला हूं और सारे देवता आएंगे, कहेंगे मेरे धाम में आइए, मेरे धाम में आइए, मेरे लोक में आके जाइए। जाते जाते तब ये सारे सामाजिक कर्तव्यों को अभी मैं नहीं करना चाहता, अब तो बस मेरी लीलाएं हो गई, अब मैं अपने धाम में जाने वाला हूं। इसलिए जब हमारा अंत होगा उस समय भी परिवार के सदस्यों से घिरे हुए रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उनके ओर जाएगा, उनके प्रति जो आसक्ति है वो कम नहीं होगी। मृत्यु के समय केवल भगवान का स्मरण होना चाहिए और किसी का नहीं। परिवार के सदस्यों का स्मरण किया तो पुनः जन्म लेना होगा, इसलिए अंत में ऐसा भला है कि परिवार के जो बिल्कुल निकट के लोग हैं वो एकदम पास में न रहें। एक भक्त थे, उन्होंने ऐसे किया था, आदेश दिया था कि मेरे परिवार के सदस्य कोई मेरे सामने नहीं आए अंत में, क्योंकि उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी, उनके लिए थोड़ा समय बचा था, तो उन्होंने भक्तों से कहा कि अन्य भक्त भले आए लेकिन मेरे परिवार के सदस्य कोई नहीं आए मेरे सामने, क्योंकि वो आ सकती फिर से ऐन वक्त पर आ सकती है। तो श्री कृष्ण भी कहा कि ये चलो अब ये आ गए हैं देवतागण, अब खैर श्री कृष्ण की तो ऐसी मृत्यु होती नहीं है, परंतु हम सबको सिखाना चाहते हैं कि अंत समय में हमें कैसे भगवान पर ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और फिर श्री कृष्ण उस समय वहां थे, जिस स्थान को यहाँ गोलोक तीर्थ कहते हैं, तो श्री कृष्ण का आविर्भाव हो गया। जैसे बिजली बादल से निकलती है और हमें पता नहीं चलता कि कैसे निकल रही है, परंतु देवताओं को स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि कैसे एक बादल से बिजली निकल के चल रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों को बिजली ठीक से दिखाई नहीं देती जबकि वो बादल से निकलती है, साधारण देवताओं को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हुआ कैसे, एक क्षण में हो गया, छट करके भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव हो गया, वो चले गए। केवल ब्रह्मा जी, शिव जी और एक दो ऐसे विशेष विशेष जो देवता है वो देख पाए भगवान के तिरुभाव को कि कैसे बिजली के समान भगवान श्री कृष्ण का तिरुभाव हो गया। भगवान के जो पार्षद हैं भगवान के नाम में, वो तो सब स्पष्ट देख रहे थे कि कैसे भगवान का तिरुभाव हो चुका है। तिरुभाव के पहले जब भगवान यहाँ ऐसे शयन कर रहे थे तो उस समय दारुक उनके जो सारथी हैं, दास्य रस में उनकी सेवा करते हैं, वो भगवान को ढूंढते ढूंढते इधर उधर आ रहे थे और इसी भालका तीर्थ में पहुंचे दारुक, और भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो तुलसी तल और मंजरियां हैं उनके सुगंध से उनको पता चला कि श्री कृष्ण यहाँ पर होंगे। तो स्थान में आ पहुंचे और श्री कृष्ण के चरणों में पड़े और शोक व्यक्त करने लगे कि अब कैसे होगा, अब हम कैसे रहेंगे, आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, दारुक तुम तो मेरे नित्य पार्षद हो, तुम भी आओगे मेरे साथ। दारुक तो रथ लेकर आए थे, रथ से उतरे थे, तो दारुक के आंखों के सामने एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि घोड़ों सहित अस्त्रों सहित वो रथ बिना सारथी के सीधे ऊपर की ओर चला गया, भगवान के धाम में चला गया, क्योंकि वो रथ भी आया था भगवान के धाम से, विशेष रथ था, उस पृथ्वी लोक का रथ तो था नहीं, तो वो भी भगवान के धाम में चला गया और रह गया आश्चर्यचकित होकर। फिर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हे दारुक, वापस द्वारका जाओ और जो भी अन्य मेरे खबर दे दो कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, जो भी यहाँ प्रभास क्षेत्र में आए थे उनका तिरुभाव हो चुका है, मेरे बड़े भाई बलराम जी भी स्वधाम गए हैं और मेरी भी ये दशा है, शीघ्र ही थोड़े क्षणों में मैं भी अपने स्वधाम लौट जाने वाला हूँ, और फिर वहां सबसे कहना कि वो इंद्रप्रस्थ में चले जाएं अर्जुन के संरक्षण में। तो भारी हृदय लेकर दारुक जी चले गए, उनको सेवा करनी थी तो वो चले गए। उधर जब खबर मिली सबको, सभी लोग बहुत दुखी हो गए, जो माताएं थीं, बुजुर्ग थे, वो सब यहाँ पर चले आए अपने अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए। ऐसे बताया जाता है कि जो वसुदेव देवकी आदि हैं वो तो सब चले गए भगवान के धाम में, द्वारका में, उस नित्य धाम में चले गए, परंतु उनके शरीर में जो देवतागण प्रकट हुए थे उसी भाव का अनुभव करने के लिए वो यहाँ पर आए, और अपने रिश्तेदारों को देखकर जो पत्नियां हैं वो अग्नि में प्रविष्ट हो गईं, अपना प्राण उन्होंने त्याग दिया, परंतु जो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान के वो तो सीधे चले गए अपने आध्यात्मिक शरीर में। कभी कभी ऐसे होता है कि भगवान के नित्य पार्षदों के भीतर और आत्माएं प्रवेश करती हैं उनके भाव के अभाव को स्वीकार करने के लिए, जैसे द्रोण और थर हैं, वो कौन है, कौन बने वो द्रोण और धर, हाँ आपने पढ़ा है ना सूतपा प्रश्न, कौन बने वसुदेव देवकी, द्रोण और धर, धरा यशोदा माता और नंद महाराज, ऐसे भागवत में उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आप भगवान के माता पिता बनोगे। फिर वो नंद महाराज और माता यशोदा बने, परंतु नंद महाराज और माता यशोदा तो गोलोक वृंदावन में सदैव रहते हैं और वो तो तपस्या करके स्थान को प्राप्त नहीं करते। तो इसका उत्तर ये है कि यशोदा माता नंद महाराज अवश्य गोलोक वृंदावन से आते हैं, परंतु उनमें ऐसे जो जीव होते हैं जैसे द्रोण धरा यहां तपस्या करके जब इस काबिल होते हैं कि वो भगवान की लीला में शामिल हो जाएं, वो इन शरीर इनके दिव्य शरीरों में मिल जाते हैं और फिर उनका भी उद्धार हो जाता है और वो भी फिर भगवान के धाम में लौट के चले जाते हैं, उनको वहां अपना दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जब ये बताया जाता है कि देवकी वसुदेव रोहिणी सब यहाँ पर आए थी, तो हमें जानना चाहिए कि उनके दिव्य शरीरों में जो आत्माएं जो देवगण देव रूप प्रकट हुए थे प्रविष्ट हुए थे वो यहाँ पर प्रभास में आए और फिर वो भी साथ में भगवान के धाम में चले गए या तो फिर वो देवलोक में वापस चले गए। इस तरह से भगवान ने अपने दुर्भाव लीला को इस स्थान में संपन्न कराया। वैसे वैष्णव समाज में भगवान के तिरुभाव लीला की चर्चा अधिक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के आविर्भाव को सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान आए हमारे बीच। लेकिन तिरुभाव में क्या होता है कि भगवान चले जाते हैं, तो भगवान के तिरुभाव के बारे में सुनने से भक्तों को बड़ा दुख लगता है कि भगवान चले गए यहां से, अपनी प्रकट लीलाओं को भगवान ने समाप्त कर दिया। आचार्यों के आविर्भाव को उतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं जितने कि तिरुभाव को मनाते हैं, क्योंकि जब आविर्भाव होता है पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति कौन है। जब तिरुभाव होता है तब तक पता चल गया होता है दुनिया को ये कितने महान भक्त हैं और ये भगवान के धाम में चले गए हैं। परंतु भगवान के बारे में तिरुभाव हम कभी मनाते नहीं है, भगवान का केवल आविर्भाव मनाते हैं। ये तो दुख का विषय है भगवान के भक्तों के लिए कि भगवान का तिरुभाव हो गया। फिर भी कृष्ण भक्तों को ये सब जानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के आविर्भाव और तिरुभाव को भी जानने से हमारी भक्ति बढ़ती है। हम समझ लेते हैं कि कृष्ण कृष्ण कौन है, कृष्ण की लीलाएं कैसी होती हैं। और श्रीमद् भागवत में पूरे 4 अध्याय हैं इस विषय के ऊपर और इधर उधर भी उल्लेख है, कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है तो अवश्य हमें सुनना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक छोटी सी कहानी बताते हैं भगवान के तिरुभाव लीला के संबंध में और इस मौशल लीला के संबंध में। मुशल से आया मौशल। वो बताते हैं कि एक बार एक राजा था, तो राजा के पास एक जादूगर आया और जादूगर ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत जादू पेश करने वाला हूं, तो आपका जितना भी धन है थोड़ा बहुत आप यहां सामने रख दीजिए। तो राजा ने अपने तिजोरी से बहुत सारे मूल्यवान रत्न आदि रखे सामने, तो एक के बाद एक जादूगर उसको उठाने लगा और ये है मोतियों की माला, ये आपके आंखों के सामने है, अब गायब, अब ये मेरा हो गया। और वो गायब हो गया। फिर दूसरा, अब ये सोने का सिक्का है आपका, ये भी गायब हो जाएगा, गायब हो गया, अब ये मेरा हो गया। ऐसे करके जितना भी धन वहां रखा था सामने वो सब गायब करा दिया उस जादूगर ने आंखों के सामने। फिर जादूगर ने कहा कि आपके ये रिश्तेदार हैं, आपकी ये रानियां हैं, उनको यहां बुलाइए, सबको उन्होंने गायब कर दिया। प्रभुपाद जी बताते थे कि पीसी सरकार नाम का एक जादूगर था, ताजमहल के सामने गया, सबके बैठे बैठे आंखों के सामने ताजमहल को गायब करा दिया। वास्तव में ताजमहल तो गायब नहीं हुआ ना, लेकिन देखने वालों को ऐसे लगा कि गायब हो गया। तो ये जादूगर ने भी ऐसे कर दिया। फिर अपने शरीर को ही उन्होंने नष्ट कर दिया। राजा के देखते देखते राजा तो हैरान हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो जादूगर कहने लगा, मैं जीवन से ऊब गया हूँ, बहुत निराश हो गया हूँ, इसलिए मेरे जीवन को ही मैं समाप्त करने वाला हूँ। ये सब जादू चल रहा है, सच सचमुच नहीं हुआ ये। तो राजा ने देखा कि अरे जादूगर ने अपने शरीर को जला डाला, और वो तो बेचारे बहुत दुखी हो गए राजा। और उधर वो जादूगर बड़े आराम से दूसरे जगह में थे। थोड़े दिनों के बाद अपने बेटी को भेजा, जो भी धन राजा ने वहां रखा था, जिसको गायब करा दिया था उस जादूगर ने, वो सब पुत्री ने लौटा दिया। और स्वयं वो जादूगर भी आए, अब क्या पुरस्कार मुझे दोगे, मैंने सब कुछ गायब कर दिया, परंतु मैं आपके सामने हूं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब एक साधारण इंसान भौतिक शक्ति के द्वारा ऐसे जादू कर सकता है कि सबको गायब करना इत्यादि, तो भगवान श्री कृष्ण अपने वंश को गायब ऐसे क्यों नहीं करा सकते? भगवान के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो सारी मौसल लीला है, ये भगवान के माया का खेल है, उन लोगों के लिए जो अश्रद्धालु है। भगवान के भक्त तो जानते हैं कि ये सब भगवान के पार्षद हैं, या तो वो भगवान के धाम में फिर से चले गए या देवलोक चले गए, बस। इस तरह से भगवान ने अपने लीलाओं की समाप्ति यहां कर दी, परंतु अप्रकट रूप में भगवान यहां पर सदैव रहते हैं। तो ऐसे यहां प्रभास क्षेत्र में ये लीला हुई। संक्षेप में हमने लीला का वर्णन किया। वैसे आचार्यों की का सहित तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन भी काफी लंबा है, परंतु एक सारांश में हमने ये आपको सुनाई आज बात, भगवान श्री कृष्ण की तिरुभाव लीला, जो कि यहाँ इस प्रभास क्षेत्र में हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम एक भजन करेंगे, भजन गाएंगे, ठीक है? जो भगवान के तिरुभाव से होने वाला दुख है, उसको मिटाने के लिए आप कोई भजन से कुछ और सुख पाएंगे, ठीक है? कौन सा भजन गाएं? मेरे मन मंदिर में। अच्छा, वो तो वहां गाए थे ना, नाथद्वारा में गाए थे ना, और कोई श्वेत कमला कुछ मंडल है, उसमें नहीं है ना? जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित मंगल गीतम,
दिन मणि मंडल मंडन हे भव खंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय ते वहर जय जय ते वहर काली अभिषाधर बंजन हे जनरंजन जनरंजन यदि कुल नलिन दिनेश जय जय देव हर जय जय देव हर मधुमुर नर कवि नाशन हे गरुड़ासन गरुड़ासन सुरकुल के निदान जय जय देव हर जय जय देव हर अमल कमल दल लोचन हे भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हर जय जय देव हर जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हर जय जय देव हर जय जय देव हर तव जलधर सुंदर है। धृतनंदर धृतनंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरे तव चरणं प्रणता वयं हे इति भावये इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय जय देव हरे श्री जय देव कबीरदम हे मुदमे कुरुते मुदम उज्ज्वल मंगल गीतम कुरुते मुदम मंगलमुज्ज्वल गीतम जय जय देव हरे 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 हरे कृष्णा। तो सूचना है तो ठीक है, उसके बाद हम 10-15 मिनट खूब कीर्तन करेंगे, ठीक है। हाँ, यस, सुबह को या दोपहर में सब भक्तों को जब धन्यवाद दे रहे थे जिन्होंने सेवा की है, तो उस समय रसोई की सेवा करने वाले भक्त आए नहीं थे, वो सेवा में व्यस्त थे। तो अब आशा करते हैं हम सब आए होंगे यहाँ पर।